आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के समाचार विशाली जैन के साथ। क्वींसलैंड 1 फरवरी से खोलेगा न्यू साउथ वेल्स के लिए बॉर्डर। भारत में किसान मार्च में हुई हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने किए 25 मामले दर्ज। और ICC ODI प्लेयर रैंकिंग्स में भारत का जलवा बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व स्कूल प्रिंसिपल मलका लाइफ को आज बाल यौन शोषण के मामले में मेलबर्न की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। लाइफर को इसराइल से ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए सालों से मशक्कत जारी थी और अब ये पेशी वीडियो लिंक के जरिए हुई है। वकील टोनी हार्ग्रीव्स ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया है और लाइफर ने बेल की अर्जी नहीं की है। बुधवार शाम को ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद वे फिलहाल 14 दिन के एकांतवास में रख दी गई हैं। उनका केस अप्रैल से शुरू होगा। क्वींसलैंड की प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे ने कहा है कि अगले हफ्ते फरवरी 1 से न्यू साउथ वेल्स के साथ बॉर्डर खुलने के बाद राज्य में पर्यटन बढ़ेगा। नॉर्दर्न बीचेस के आउटब्रेक के कारण दिसंबर से सिडनी, वुलंगोंग और ब्लू माउंटेन के 35 स्थानीय सरकारी क्षेत्रों के यात्रियों के लिए क्वींसलैंड की सीमा को बंद कर दिया गया था। सुश्री पलाशे का कहना है कि सीमा बंद करना परिवारों और पर्यटन संचालकों के लिए समान रूप से कठिन रहा है।
Especially with the closure of the Greater Sydney area. But now's the time for families and friends to be reunited. The 1st of February gives some certainty around planning. And of course, it also means that you will not need a border declaration pass to come here.
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि वे रविवार 31 जनवरी को ग्रेटर सिडनी के यात्रियों के लिए सीमा प्रतिबंधों को खोल देगा। आगंतुकों को क्वारंटीन तो नहीं करना होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कोरोना वायरस टेस्ट करवाने होंगे। लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल के विवरण का खुलासा किया है, जिसमें रिचर्ड माल्स को रोजगार पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी दी गई है। वे कहते हैं कि आसान विकल्प तो ये होता कि कोई बदलाव ना करना पड़े, लेकिन वे लेबर को मजबूत करना चाहते हैं और कैबिनेट के सबसे नए सदस्य के रूप में एड हसिक को नामित किया गया है। विपक्षी नेता श्री एल्बनीजी का कहना है कि वे शीर्षकों से शैडो शब्द हटाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया जनता के लिए लेबर की टीम को बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं।
So this is a strong team. The reshuffle is all about putting jobs at the centre of what we will do. And that's why Richard Marles, my deputy, is taking on a job leading Labor's focus out of the national recovery that will be required out of this pandemic.
And now, international news. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि अगर COVID-19 के टीके नए म्यूटेशन के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता खोते हैं तो उन्हें जल्दी अनुकूलित करना संभव है। WHO का ये वक्तव्य तब आया है जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अगले सप्ताह तक कोरोना वायरस के UK स्ट्रेन के खिलाफ अपने वैक्सीन के एक अध्ययन से प्रभावकारिता डेटा की उम्मीद कर रहा है। WHO के आपात कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर माइक सियान का कहना है कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि पहले से उत्पादित टीकों में से कोई भी कम प्रभावी होगा।
We change the vaccine composition twice a year for the northern and southern hemisphere, and we're able to issue vaccines very, very quickly to combat the predominant flu strains every year. So there's no reason, even down the line, if this virus evolves to a point where our vaccines begin to lose effectiveness, we can adapt those vaccines, and I believe we can adapt those vaccines quickly.
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि ऑस्ट्रेलिया लंबी अवधि के लिए न्यू साउथ माफ़ कीजिएगा, न्यूजीलैंड के लिए अपनी सीमाओं को बंद नहीं करेगा। न्यूजीलैंड में सामुदायिक फैलाव का एक मामला सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के साथ सोमवार 25 जनवरी को बिना क्वारंटीन के यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थी। 72 घंटे के लिए लगाया गया यह प्रतिबंध आज दोपहर 2 बजे समाप्त हो गया है, पर ऑकलैंड में होटल क्वारंटीन में 2 लोगों के कोरोना वायरस के ज़्यादा संक्रामक साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के साथ पॉजिटिव आने के बाद यह प्रतिबंध फिर लागू किया जा सकता है। सुश्री आर्डन ने पहले इस कदम पर अपनी निराशा व्यक्त की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अपनी सीमा को लेकर सारे निर्णय ऑस्ट्रेलिया के ही हैं।
I do know that our officials and High Commissioners have been staying in close contact. So as you'd expect, we are providing information to our counterparts in Australia. The decision will ultimately be for them. I've never got the sense it would be a long-term position for them. They're ultimately just waiting for a bit more information.
अमेरिका में नवस्थापित बाइडेन प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अगले 4 हफ्तों में कोविड-19 से 90,000 से अधिक मौतें हो सकती हैं। ये चेतावनी तब आई है जब प्रशासन ने महामारी पर अपनी पहली टेलीविजन ब्रीफिंग की, जिसमें विशेषज्ञों ने टीके के वितरण और प्रशासन में सुधार के प्रयासों पर चर्चा की। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नए निदेशक डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की का कहना है कि यूएस में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की औसत संख्या 4.9% से घट गई है।
Though I am encouraged by these trends, our case rates remain extraordinarily high and now is the time to remain vigilant. If we continue on the current trajectory, the CDC most recent national ensemble forecast predicts that 479,000 to 514,000 COVID-19 deaths will be reported by February 20th, 2021.
अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 4,28,000 से भी अधिक मौतें हो चुकी हैं। और अब खबरें भारत से। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कल शाम पत्रकारों से बात की गई। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में 25 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि मामलों में किसान संगठनों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि किसान लीडर्स ने तय रूट और कंडीशन ना मानकर विश्वासघात किया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि CCTV और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
उधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान संगठनों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार की सख्ती के मद्देनज़र किसान संगठनों ने अपने तेवर कुछ नरम किए हैं। इस हिंसा के बाद किसानों ने बजट के दिन यानी 1 फरवरी को संसद मार्च की योजना रद्द कर दी है। कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पिछले करीब 2 माह से दिल्ली में मोर्चा संभाले किसानों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अगले सोमवार को संसद तक मार्च करने की अपनी योजना को टाल दिया है। संसद में 1 फरवरी यानी सोमवार को बजट पेश किया जाना है। मंगलवार की रैली में हुई हिंसा के बाद किसानों ने यह निर्णय लिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर एस राजेवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि
पहली तारीख का जो हमने पहली फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। पार्लियामेंट को जो मार्च का पहली तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बुधवार को समाप्त होने वाले 24 घंटों में कोरोना के 12,679 नए मामले सामने आए हैं। इस एक दिन में भारत में 13,320 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 137 मौतें दर्ज की गई हैं। अब तक 1.3 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1.53 लाख से अधिक लोगों की भारत में जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 1,76,000 से अधिक है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी गुरुवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.90 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 76 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। आईसीसी की अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग में भारत का दबदबा बरकरार है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आईसीसी की वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि गेंदबाजों की सूची में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सूची में 7वें स्थान पर हैं। फुटबॉल में मटिल्डास की कैप्टन सैम केर की अहम भूमिका के साथ चेल्सी ने एस्टन विला को 4-0 से हराकर 32 मैचों में नाबाद रहकर महिला सुपर लीग में नया रिकॉर्ड बनाया। केर ने मैच के शुरू में ही डेडलॉक तोड़कर एस्टन विला की गोलकीपर लीजा वेस्ट के बाईं ओर से एक तेज गोल दाग दिया और हाफ टाइम के पहले ही चेल्सी ने अपनी लीड 2 गुनी कर ली। और अब आखिर में बात करते हैं कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां पूरे दिन धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में सवेरे हल्की फुहारें महसूस होंगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में तेज बारिश के आसार हैं। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री और न्यूनतम रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में फुहारें बरसती रहेंगी। यहां का तापमान अधिकतम रहेगा 20 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की, जहां भी पूरे दिन में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। यहां का तापमान अधिकतम रहेगा 26 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में बरसात की आशंका है। यहां का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। डार्विन में बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तापमान रहेगा 31 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 25 डिग्री। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान अधिकतम रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।